ओम शांति। आज 16 जून है। कौन सा दिवस है? फादर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय फादर्स डे, इंटरनेशनल फादर्स डे। और थर्ड संडे, सन का भी डे है। फादर है और संडे, सन का भी डे है। तो आज की मुरली जो थी, बाबा ने हम सबको हमारे फर्ज याद कराए। हम विशेष आत्माओं का क्या क्या फर्ज है, तो हम देखेंगे। जो हमारे सामने एग्जाम्पल प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो अंतर्राष्ट्रीय पिता हैं, जो सृष्टि के आदि पिता, उनकी कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। देखेंगे साथ में कि वो अपने में हैं या केवल बुद्धि तक सीमित ही है। पहले तो स्मृति में रहनी चाहिए, फिर उसके बाद वो हमारे में होनी चाहिए। और साथ साथ में उन विशेषताओं के आधार पर आज जो हमारी फर्ज बाबा ने याद कराए, उन फर्ज को, उनके कर्तव्य को हम पूरी तरह निभा रहे हैं, फर्ज अदाई कर रहे हैं। तो आज बाबा ने किसको देखा? दिलाराम बाप ने किसको देखा? जो सदा दिल खुश बच्चे हैं। और संसार में कौन से बच्चे हैं? दिल के दर्द से कहरा रहे हैं वो, और हाय हाय कर रहे हैं, और तुम बच्चे बाह बाह कर रहे हो। तो संसार का जो परिदृश्य है, संसार का जो समाचार है, वो उस समय का बाबा, 84 की बात, और अभी तो इस संसार का कितना परिवर्तन हो चुका हुआ है। जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। तो आज के परिदृश्य में हम देखें तो संसार किस ओर जा रहा है, और बाबा ने हम सबको अपनी गोद में सुरक्षा, अपनी सुरक्षा में, छत्रछाया में रखकर हमारी पालना कर रहे हैं, स्थूल सूक्ष्म सब तरह से। बाबा ने कहा वो आत्माएं संसार की कौन कौन से दर्द से वो दुखी हैं। पूरा संसार ही, विश्व भी दुख दर्द से चिल्ला रहा है। कौन कौन से दुख दर्द हैं? पांच प्रकार के बताए। हाँ, एक है तन का शारीरिक दर्द, अनेक प्रकार हैं। दूसरा है संबंध संपर्क, तीसरा धन का, और चौथा भी धन का ही है। धन के दो हैं। बाबा ने कहा धन ज्यादा है तो भी है, धन कम है तो भी है, दोनों में। और पांचवा प्राकृतिक आपदाएं। तो इस संसार में देख रहे हम किस तरीके से वो आत्माएं उन चीजों के वशीभूत हैं और शक्तिहीन हो चुकी हैं, खोखली हो चुकी हैं अंदर से। और बाबा ने हम सब आत्माओं को, हम सब ब्राह्मण बच्चों को, उन आत्माओं के दुख दर्द जो बढ़ रहे हैं, उनको कैसे छुटकारा दिलाएं, उसके लिए बाबा हमको दिन प्रतिदिन हमारी पालना करते रहते हैं, हमें ज्ञान योग से मजबूत बनाते रहते हैं। लेकिन वो पालना हम तभी दे सकते हैं जब हम ब्रह्मा बाबा के नक्शे कदम पर चलेंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहला जो हम देखा त्याग, और ब्रह्मा के अनेक कदम, अगर विशेषताओं पर वर्णन करते, बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 16 विशेषताओं पर वर्णन करेंगे। तो बाबा का बेहद का त्याग रहा। जब तक हम व्यर्थ के त्याग, जो अनावश्यक इच्छाओं का त्याग नहीं करते, तब तक हम बेहद की सेवा में, या जो हमारे बेहद के कर्तव्य हैं, उनके प्रति पूरा निष्ठापूर्वक हम उन पर खरा नहीं उतर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको त्याग चाहिए। ब्रह्मा ने एक धक्त से सारा त्याग कर दिया, फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं उन्होंने। तो हमें तो बाबा ने गर्भगृह में रहना भी सिखलाया। आज भी अदर कुमारों के साथ बाबा ने मुलाकात की, तो बाबा ने बताया गृहस्थी कौन और ट्रस्टी कौन। क्या परिभाषा बताई? गृहस्थी अर्थात दुखी, और ट्रस्टी अर्थात सुखी। तो हमको अपने आप की जांच करनी है कि सचमुच हम गर्भगृह में रहते हुए उस स्थिति में हम रहते हैं, ट्रस्टी होकर रहते हैं, चाहे हम यहां भी हैं, ये भी हमारा बेहद का घर है, यहां भी हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, या यहां भी हमारे मन में गृहस्थी ही घूम रही है। कई बार अनुभव किया होगा, जब जब देहधारियों का चिंतन चलता है तो स्थिति एक सेकंड में डाउन चली जाती है, और जैसे बाबा का चिंतन चलेगा तो एकदम स्थिति हाई हो जाती है। तो ट्रस्टी अर्थात हम समन संपर्क में हैं, निभाना है सबको, लेकिन निमित्त भाव से। जैसे बैंक में कैशियर होता है, उसका कैश के साथ इतना लगाव नहीं होता, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है। उसी तरह हम अपने कर्तव्यों के प्रति जो बाबा ने हमको सौंपे हैं, उनको निमित्त भाव से, जो लौकिक जिम्मेवारियां हैं उनको भी बाबा के तेज सेवा के अंदर समझो। तो क्या हमारी वो मनोदशा उस समय वैसी रहती है, उस मनोदशा में रहकर हम वो सेवा कर रहे हैं या उनको भी अपना समझ रहे हैं? बाबा ने कहा ना, अगर मेरा मेरा समझते हैं तो, आज की मुरली में था ना अदर कुमारों के साथ मुलाकात, मेरा मेरा समझते तो क्या होता है और तेरा तेरा समझो तो क्या होता है? मेरा मेरा समझते तो मूंज जाते हैं और तेरा तेरा समझते हैं तो मौज में आते हैं। तुमको स्मृति रहेगी तब तो हम मौज में रहेंगे। बाबा ने कहा संगम युग है मौजों का युग, अगर अभी मौज में नहीं रहेंगे तो फिर कब करेंगे? ये थोड़ा सच में है। तो संगम युग के लिए बाबा ने आज की मुरली में दो बातें बताई, एक तो ये संगम युग मौजों का युग है और दूसरा ठप्पा लगाने का, स्टैंप लगाने का है। कौन सी स्टैंप बताई, कौन सी स्टैंप बताई? हाँ, यहाँ स्टैंप लगाना और वहां स्टेटस, भविष्य का स्टेटस बनाने के लिए अभी स्टैंप लगानी है। लेकिन ये स्टैंप लगाने का कंडीशन क्या है, इस स्टैंप कौन लगाएगा? खुद नहीं लगेगी, हमारे लिए कोई दूसरा लगाएगा, परिवार और बाप। तो क्या हम सबसे संतुष्टता के सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं दिन प्रतिदिन? हमारे प्रति सबके मन में संतुष्टता के भाव पैदा होते हैं या हमें देख के दूसरा मुंह फेर लेता है? ऐसा तो नहीं होता है, या कोई रास्ता चेंज कर देते हैं? क्योंकि बाबा ने कहा अंत में सबके स्वास्थ्य संस्कार निकलेंगे। तो हमारी बेहद की मानसिकता चाहिए, बेहद का दृष्टिकोण चाहिए। तो जो भी हमको छोटी छोटी बातें हैं उनको इग्नोर कर देने का, बहुत इतने जन्मों से तुम वही करते आ रहे हैं, अगर अब भी वही करेंगे छोटी छोटी बातों को पकड़ के हम अपनी अविनाशी खुशी को खो दें, तो बाबा ने कहा वो देखना तो वो भी ये देखे और वो देखना तो वो भी यहां देखो, कौन बड़े ते बड़ा देखना तो वो भी इधर देखो और बड़े बढ़ते बड़ा वो देखना तो वो भी इधर देखो, तो हमारे जैसा कौन होगा? वो समझ जाए डैश डैश डैश। तो ये संगम युग है, मौजों का युग है। तो ऐसा नहीं, ये हमारा जीवन है मूंज में चलता जा रहा है, क्या करना क्या नहीं करना, कोई जीवन को दिशा ठीक नहीं है, दिशाहीन बेलगाम जीवन है। जो करना है वो कर नहीं रहे हैं, जो नहीं करना वो करें, या जब आया तब कर लिया, जब नहीं आया तब नहीं किया, माना जीवन एक अनुशासित जीवन नहीं है। तो फिर तो एक एक उनको कहेंगे जानवर जैसा हो गया, दिशाहीन हो गया। इसलिए बाबा ने हम सब ब्राह्मणों की अनुशासित दिनचर्या बनाई हुई है। ये तो स्थूल दिनचर्या, लेकिन मन की दिनचर्या भी। तो मन हमारे जो ख्याल आते हैं, जो आज बाबा ने कहा एक ख्याल में ख्वाब में था कि तुमको भगवान मिल जाएगा, एक प्यारा था आज कि तुम कोटों में कोई और कोई में विशेष आत्मा हो, दुनिया वाली आत्माएं प्रयास कर रही हैं, प्रयत्न कर रही हैं और तुमने पा लिया, और उसके बावजूद ही हमारे ख्याल अतीत तो जा रहे हैं, जो पाना था सो पा लिया, जो खाना था सो वो ही खा लिया, और फिर भी इधर उधर खाने के लिए पीने के लिए भाग रहे हैं, तो क्या होगा? तो हमें वो स्मृति में रखना है जो जो बाबा से हमको मिला है। तो सबसे पहला ब्रह्मा का जो कदम है बेहद का त्याग, अगर वो त्याग करेंगे तो इन चीजों इस पथ पर हम खरा उतर पाएंगे। जो बाबा ने त्याग किया कम से कम उस पर थोड़ा थोड़ा तो उतरे, तभी तो बाबा की नजरों में हम समाये रहेंगे। अगर उसके नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे तो बाप भी हमारे पर नजर कैसे रखेगा? घर में बाप की नजर कौन से बच्चों पर होती है? जो घर की उसकी जिम्मेवारियों को संभाल सकते हैं उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए बाप आगे बढ़ता है, नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे देगा? तो बाबा भी हमारे ऊपर नजर तो रहती है, लेकिन अगर उन जिम्मेवारियों को निभाने के लिए हम ब्रह्मा बाबा के कदमों पर चले, त्याग तपस्या सेवा, बाबा की तपस्या, क्या उनके जैसी हमारी तपस्या चल रही है? ब्रह्मा बाबा की तपस्या चल रही है, पूरी पूरी रात बैठ बैठ कर साकाश देते थे, तो रात को थे कि हमारे दिल में साकाश देने का काम चल रहा है, या जितना जिस समय हम योग में बैठते हैं वो भी हमारा ढीलम डाकड़ी चल रहा है, कम से कम उतना समय तो चले। इसलिए सवेरे शाम या जब भी हमको अगर हम घर की जिम्मेवारियों को निभाने में टाइम जाता है जाएगा, वो तो करनी है, जरूरी भी है। उसके लिए बाबा ने आज एक सेंटेंस बोला मुरली में कि संसार की जो आत्माएं दुख दर्द में फंसी हुई है उनको आप कर्मयोगी बनकर, उनको कर्मयोगी बनाकर उनको कर्म भोग को चुक्त करने की शक्ति दो, उनको उनको अपना हिस्सा दो, उनको महादान दो, वरदान दो, अर्थात हमारा कर्म क्षेत्र पर हमारे कर्म ऐसे हो जाएं जो योग से जुड़ जाएं। वो अर्थात हम चलते फिरते भी हमारी स्मृति वैसी बनी रहनी चाहिए, कर्म में योग समा जाए, या ऐसा ना हो कि योग में बैठे कर्म याद आ रहा है, उल्टा ना हो जाए कहीं। अगर योग में बैठे कर्म याद आ रहा है अर्थात हम कर्म क्षेत्र के ऊपर पूरा कर्म कॉन्शियस हैं। अगर योग में बैठे कर्म याद नहीं आ रहा अर्थात हमने निमित्त भाव बनकर किया है। हाँ, यदि अगर कर्म क्षेत्र पर कोई गलती होती है तो वो योग में बैठ के याद आ जाएगी, ये गलती हुई, उसको सुधार करने के लिए हमें यथार्थ टचिंग होगी। अगर पूरा कर्म कॉन्शियस किया है, देहधारियों की याद में किया है, या स्वार्थवश किया है, या अपना को उसमें कुछ छिपा हुआ है, अपना स्वार्थ छिपा हुआ है, तो फिर योग में बैठे वो कर्म खींचेगा, बुद्धि बार बार नीचे आएगी, भारी होगा, नींद आएगी, सुस्ती आएगी, मजा नहीं आएगा, नीरस लगेगा, निराश हो जाएंगे, ऐसे टाइम चले जाएगा, लगेगा कि कुछ पाया ही नहीं है। तो जितना हमारा ज्यादा से ज्यादा हमारा जो टाइम है ना कर्म क्षेत्र पर बीता है, तो कर्म क्षेत्र में हमको अधिक से अधिक ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा उस कर्म क्षेत्र पर भी योग समाता जाए, धीरे धीरे हर कर्म के साथ हमारा योग किसी न किसी तरीके से जुड़ जाए। बाबा ने कहा किसकी सेवा कर रहे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं, चाहे लौकिक में भी कर रहे हैं किसी की, चाहे वो लौकिक ही काम सारा है, लेकिन हम वो अलौकिक ही समझना उसको भी, क्योंकि पूरा संसार बाप का ही है, संसार की हर आत्मा उसकी है, उसके बच्चे हैं, तो हमारे कर्मों से उनको सुख मिले, उनको भी कर्मयोगी बनने की प्रेरणा है कि कर्म करना तो हमें ऐसे करना है, वो कर्म एक मनोरंजन बन जाए, खेल बन जाए, कर्मों में भारीपन आए, हल्कापन आ जाए, डबल लाइट हो जाए, तो वो कर्म क्षेत्र भी हमारा ब्रह्मा बाबा जैसे तपस्या बन जाए। अब बाबा कोई सारा दिन पूरा दिन तपस्या थोड़े बैठे रहते थे, बाबा की तपस्या ऐसे होगी जो उनका नींद का टाइम भी अधिकतर योग में चला जाता था, तो हमारी नींद भी दिन प्रतिदिन ऐसी होती जाए कि नींद में भी सेवा के स्वप्न आ रहे, योग लगाने के स्वप्न आ रहे, या कोई कोई इसी तरह ज्ञान योग के स्वप्न आ रहे हैं, या नींद में भी किसी को मार तो नहीं रहे हैं, कभी कभी नींद में गुस्सा आता है ना, तो वो चेक करना है। बाबा ने कहा साकार जीवन का जो परिणाम है, उसका जो प्रमाण है, वो हमारा नींद में परिलक्षित होता है, स्वप्न में होता है, स्वप्न हमारे साकार जीवन का आधार है। तो ब्रह्मा बाबा जैसी तपस्या तभी हम कर पाएंगे जब हम कर्म क्षेत्र पर सारा 24 आवर उनके जैसा हमारी मानसिक स्थिति बनी रहे। तपस्या करनी है, कौन कौन सी चीजों से त्याग करना ताकि हम तपस्या ठीक से कर सकें। तीसरा फिर सेवा, क्या बाबा जैसे हम सेवा कर रहे हैं, बेहद की सेवा में उपस्थित हैं, विश्व कल्याणकारी की सेवा है, या बाबा ने कहा ना आज की मूल्य में, या अपने ही उन्नति के लिए, अपने कल्याण के लिए मस्त हैं, आज की मूल्य में था ना, ये तुमने जमा किया, इतने समय से तुम बच्चे जमा करते आए हो, तो अपने जमा के खाते से उन आत्माओं को हिम्मत और उल्लास दिलाओ। तो क्या वो हमारे में ऐसा देखने में कुछ आ रहा है कि हम दूसरों को हिम्मत उल्लास दिला रहे हैं, या अपने कोई इंतजार में बैठे हों कि हमको कोई हिम्मत उल्लास देने आए, मेरा कोई कल्याण हो जाए, मेरे दर्द को मिटाने आ जाए, मेरे दिल का कोई हालचाल पूछ ले, मुझे कोई पूछता नहीं है, ऐसा तो नहीं है कहीं। अगर हम स्वयं के प्रति ऐसी मानसिकता रखेंगे कि हमें कोई पूछने के लिए आए तो दूसरों को कब पूछेंगे हम, तो अपने दिल के दर्द की बजाय दूसरों के दिल के दर्द को मिटाने के लिए, उनको सुख देने के लिए अपने आप की भी जांच करनी है, उससे सारा ले लेना है, और वो खुले खजाने हैं, खजाने भरपूर हैं। बाबा ने कहा ना खजाने भरपूर होंगे तो उनको दे सकेंगे, अगर खजाने भरपूर ही नहीं तो कैसे देंगे उनको। तो ब्रह्मा बाबा जैसी तपस्या चाहिए, सेवा चाहिए उनके जैसी, समर्पणता, नेक्स्ट समर्पण भाव, उनके जैसी हमारी समर्पणता है। बाबा बुद्धि से समर्पित है ना, बाबा ने कहा कि मेरी सेवा है, लेकिन अगर हमारी उनके जैसी मानसिकता नहीं तो क्या होता है, ये मेरी सेवा, ये तेरी सेवा है, उस चक्कर में, मेरे तेरे के चक्कर में सारा खत्म। बाबा ने अगर उस सेवा में मैं पाने तो कितना जमा होता है, 5%। अगर कोई भी हम सेवा करते हैं उसमें मैंपन है तो वो केवल 5% ही जमा होता है, अगर मैंपन नहीं है तो 95% जमा होता है, 100% भी करना, क्योंकि देव मान जाता थोड़ा नहीं है। सूक्ष्मते सूक्ष्म देह अभिमान की रगे तो हमारी इतनी पक्की हो चुकी है ना, इसलिए बाबा कहते हैं बार बार देह अभिमानी बनो। चार दिन पहले की मुरली में एक बहुत सुंदर महावाक्य थे बाबा के, कि घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने के महावाक्य सुनते रहो तो क्या होगा। इसलिए रोज रोज क्या होता है, बाबा तो रोज ये कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो, लेकिन उसमें एक महावाक्य तो घड़ी घड़ी आप ये सुनते रहेंगे तो क्या होगा, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो इसको घड़ी घड़ी सुनना, मन के अंदर या अनुभव करना है, जैसे योग में बैठे या कहीं भी बैठे, जैसे बाबा कान में आके फूक मार रहे, बच्चे तुम आत्मा है, एकदम हल्की है सेवा से, तुम प्योर सोल है, महान आत्मा, शुद्ध आत्मा, अंदर में जैसे कह रहा है, कोई दूसरा देख नहीं रहा है, तो अंदर ही अंदर वो प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने तो लिख के की, अभी वो समय नहीं है लिखने का, लिख भी सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लिखना भी चाहिए, क्योंकि जितना हमारे कर्मेंद्रियां उस पुरुषार्थ में बिजी रहेंगी तो कर्मेंद्रियों का भी शुद्धिकरण होता जाएगा, नहीं तो कर्मेंद्रियां भी दिन प्रतिदिन धोखेबाज देती जाएंगी। बाबा ने कहा आज धोखे की बात भी थी, कौन सी थी मुरली में धोखे की बात, धोखे की बात थी आज के मुरली में, दो जगह था, किसको याद है, माना किसी ने धोखा नहीं खाया आज, सबको पता है माया तो धोखेबाज है, लेकिन आज की मुरली में दो जगह धोखा दिया, कहां पर। बाबा ने कहा उसमें एग्जाम्पल दिया था स्टैंप लगाने की, जहां बात थी, अभी स्टैंप लगाए तो भविष्य में स्टेटस मिलेगा, अगर एक भी बात की कमी रहेगी तो कम पद हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया था कि सारा सामान इकट्ठा कर लिया, अगर एक माचिस भी रहेगी तो फिर वो सामान क्या क्या करेंगे, माचिस नहीं आग लगाने के लिए तो रोटी कहां से पकेगी, फिर भूखे पेट भजन हो ना गोपाला, माल होते हुए भी जैसे नहीं है। और दूसरा एग्जाम्पल दिया था कि बच्चे कहते हैं याद में तो हम रहते हैं, बाबा ने कही बात तो ठीक है, याद सब्जेक्ट बहुत ऊंचा है, नंबर वन है, ठीक है, लेकिन हर एक गुण भी होना चाहिए, अगर एक भी गुण की कमी रहेगी, एक भी गुण की कमी रहेगी तो विस्मय पर धोखा खा लेंगे। तो ये दो बातें धोखे की, तो गुण कितने हैं वो भी हमको पता होना चाहिए, क्या वो सारे गुण हमारे में हैं, कितने गुण हैं, हजारों गुण हैं, हाँ ठीक बोला तो वो सारे गुण हमारे में आते जा रहे हैं, यहां 36 गुण लगे ना, वो 36 के 36 से आते हैं किसी को, हाँ वो देखो बहन जी को आते हैं सारे 36 गुण, वो माता जी को भी आते हैं। आज माताओं के लिए क्या बोला बाबा ने, माताओं को छुड़ा दिया, किससे, दासीपने से छुड़ा दिया, भक्ति से छुड़ा दिया, और क्या क्या कर दिया, हाँ झूले में, गुजराती माता जी झूला याद आ रहा है, क्योंकि झूला तो था ही ना, आज झूलना सिखा दिया और झूलाना सिखा दिया, है ना, और क्या किया, माताओं को जगत माता बना दिया, है ना जगत माता, फिर छोटी मोटी माता थोड़ी, जगत माता, और क्या बताया, भटकने से छुड़ा दिया, बाबा ने कहा गृहस्थी में फंसना नहीं है, बता ना, और देखा गया है जो माताएं या कोई भी भाई सेवा में अपने को सेवा के बंधन में बांध देते हैं वो संसार के सब बंधनों से छूट जाते हैं। अद्र कुमारों के साथ था निर्बंधन अर्थात दुखी, ट्रस्टी अर्थात सुखी, तो हम अपने को अगर ईश्वरीय सेवा में बंधन में बांध देते हैं तो सब बातों से धीरे धीरे निर्बंध होते जाएंगे, क्योंकि उसकी सेवा में हम मददगार बनने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाते तो हजारों कदम मदद के लिए वो बंधा हुआ है, लेकिन पहले हम थोड़ा आगे तो चले ना, इसलिए बाबा कहते हैं एक कदम बच्चों का हजार कदम मेरे हैं, तो वो कदम कदम पर हमें मदद देने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन बशर्त है कि पहला कदम हमारा आगे हो। तो ये माताओं के लिए कहा था, तो चल रहा था त्याग तपस्या सेवा समर्पण था, तो किस समर्पण तरीके से हम इस यज्ञ में अपने को तन मन धन से समय संबंध संपर्क से स्वास्थ्य से कितना हम अपना लगा रहे हैं, इसमें कितना हम सफल कर पा रहे हैं अपने को, समर्पण भाव है हमारे में वो। और बाबा को फिर नेक्स्ट बेहद का नशा कितना था, भविष्य के बेहद का नशा, इसी हॉल में बाबा के दादियों के मुखारविंद से अनुभव सुनते हैं ना, कि बाबा यहां खिड़कियां लगा के यहां क्या करते थे, मिचुन बन जाते थे, रेगड़ियां पहनते थे, तो भविष्य के बेहद का नशा, तो हमें वो नशा रहता है कि हम भी कमरे का बंद करके और रेगड़ियां पहने, लेकिन कोई देखेगा नहीं हमारा, बताएगा कौन फिर बात लेकिन ये तो अंदर की बात है। तो भविष्य के देवता पद का नशा रहता है कि सचमुच हम देवता बनने वाले हैं। अभी आप ही इमेजिन करो कि ये सभी देवताएं बैठे, सबके सिर पर ताज लगे हुए हैं, है ना, नहीं तो अगर ये स्मृति नहीं रहेगी तो क्या होगा पता है, अगर 10 मिनट पहले वो किसी भाई ने कुछ बोला ना तो वो ही याद आएगा, ये और देवता, ये कहां देवता है ऐसे बोलेंगे। तो हमारी मेंटेलिटी स्वयं में अंदर में देवता गुण होंगे, स्वयं को स्वयं की आंखों पर वो चश्मा पहना करते हुए वो देवी गुण दूसरे में दिखाई देंगे, नहीं तो दूसरों की कमी कमजोरियों का चिंतन, सारा जहर अंदर में भरा हुआ इस पात्र के अंदर, और जहर भरा हुआ तो क्या होगा, जहर क्या करता है, अनेक प्रकार की बीमारियां लगेगी अंदर में। तो अगर मुरली के महाबाके अमृत किस माने, तो ये अमृत हमारे इस बर्तन में ठहरेगा तो फिर तो वो ताकत आएगी ना, शक्ति आएगी, तो ये हम कुछ कर पाएंगे समर्थ। आज था मुरली में महावाक्य, जो बच्चे समर्थ स्थिति में रहते हैं वो ही सेवा या वो ही विघ्नों को पार कर लेते हैं, और जहां विघ्न है वहां और जहां विघ्न है वहां लगन नहीं, ये भी ठीक है, ठीक है बोला आपने, और जहां रात है वहां दिन नहीं, और रात है तो अंधकार है, दिन है तो अंधकार नहीं, जहां और विघ्न है तो अर्थात लगन की कमी है, और लगन है तो विघ्न नहीं है, लगन अर्थात शक्तिशाली, लगन वाले बच्चे जो होते हैं वावने को वो शक्तिशाली बच्चे हैं, तो लगन के आगे विघ्न ठहर नहीं सकते हैं। तो कौन सा कदम चल रहा था, बाबा के जैसा बेहद का नशा, वो नशा रहेगा तो विघ्न तो माया कैसे कागज के शेर की तरह है, चींटी की तरह है, उसी से हम डर जाते हैं, बताओ, मास्टर साहब शक्तिवान और कोकरे से डर जाते हैं। तो बाबा जैसा बेहद का नशा, स्वाभिमान है ना, घर में पिता होता तो उसको स्वाभिमान हो रहता है, घर का मैं मुखिया हूं। तो हम बच्चों को भी बाबा ने मुरली में कहा है कि तुम बच्चे सारे सृष्टि के दादे परदादे हो, सुना है मुरली में कुछ दिन पहले था ना, तुम सारी सृष्टि के दादे परदादे हो, पूर्वज हो, तो क्या उनको स्मृति रहती, मैं दादा परदादा हूं, पूर्वज हूं, जैसे घर में मुखिया को कैसे जिम्मेवारियों का अपने सिर पर रहता है कि मुझे सबकी जिम्मेवारियां पूरी करनी है, सबकी इच्छाएं पूरी करनी है, बच्चों के ऊपर कितना ख्याल रहता है, किस तरीके से पालना करता है वो, तो उस तरीके से हमारे मन के अंदर भी हमारे सम्मान में भी हो रहे कि हम पूर्व जैसे सृष्टि के दादे परदादे हैं, तो अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने के लिए तो ही हम जागरूक रह पाएंगे, नहीं तो वो बेहद का नशा नहीं रहे, वो स्वाभिमान अंदर में जागृत नहीं होगा। तो बेहद का नशा रखना है और स्वाभिमान में रहना है, हम छोटे मोटे थोड़े नहीं है, महान आत्मा है, भगवान ने कितने प्रकार के टाइटल दिए हैं, लेकिन हम पिछले जन्म की चीजों को पकड़ के रहते हैं, पिछले जन्म ना इस ब्राह्मण जन्म से पहले के, इसके पिछले का तो पता ही नहीं है, तो उन चीजों को पकड़ के नहीं रहना, जो बीत गया सो बीत गया, वर्तमान में जीना है, जो रोज का ताजा ताजा हलवा मिलता है उसको खाएंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे, तो उसका चिंतन करना है ना, और एक दूसरे को पूछते रहना है, हमारी भी परीक्षा बहुत लेकर देते हैं, दिन में खिड़की खोल कर पूछते रहते हैं, आज क्या था, कल गया था, कल गया था, तो हमको याद रखना पड़ता है। तो याद रखने का ये चीजें, यही हमारा खुराक है, ये तो हमारी जिंदगी, ये तो पढ़ाई है, तो बाप का बच्चों के ऊपर कितना अपेक्षा रहती है कि मेरे बच्चे मेरा नाम बाला करेंगे, तो क्या हम सचमुच थोड़ा बहुत बाला कर रहे हैं, थोड़ा तो इस यज्ञ में हमारा उंगली संयुक्त तो लगना चाहिए, है ना, तो बेहद का नशा रहना चाहिए, बेहद का स्वाभिमान रहना चाहिए, बाबा जैसी समर्पणता, बाबा जैसा त्याग, बाबा जैसी तपस्या, बाबा जैसी सेवा, और सर्व के स्नेही, सर्व के स्नेही बनने की बाबा ने एक परिभाषा बताई है 69 की मुरली में, कौन सी, तुम इस चीज से प्यार करो तो तुम्हें सब प्यार करेंगे, तुम इस चीज के स्नेही बनो तो तुम्हारे सर्व स्नेही बन जाएंगे, कौन से, और एक चार दिन पहले था, स्नेह में समाधान नहीं संपूर्ण ज्ञान है, वो अलग है, लेकिन बाबा ने कहा पुरुषार्थ के स्नेही बनो तो तुम्हारे सब स्नेही बन जाएंगे, तो हमको किसी के स्नेही बनने की कोशिश नहीं करनी है, पुरुषार्थ के स्नेही बनेंगे तो सब स्नेही बन जाएंगे, और स्नेह की बाबा ने उस दिन 16 बातें बताई थी, ये ईश्वरीय स्नेह क्या क्या कर देता है, चार दिन तो पहले मुरली चली है, 2-4 टंडे पहले, ये भिखारी को अधिकारी बना देता है, ये स्नेह ईश्वर जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तुम्हारा परमात्मा देन है, ये परमात्मा की देन है, ये ईश्वरीय स्नेह क्या है, ब्राह्मण जन्म दिया है इसने, ईश्वरीय स्नेह ने ईश्वरीय सेवा के योग्य बना दिया, स्वतः योगी सहज योगी कर्म योगी बना दिया, और क्या करें बताया, बताओगे था ना 4 संडे पहले मुरली, भूल गया वो, ये ईश्वरीय स्नेह क्या करता है, मुश्किल को अति सहज बना दिया, सहज नहीं अति सहज, और तूफान को तोहफा बना दिया, और क्या किया, दिल के टुकड़े टुकड़े हुए थे, क्या कर दिया उसको, जोड़ दिया, दिलाराम के दिल में बिठा दिया उसको, और क्या बताया, बाप समान बना दिया, और क्या बताया, सेव कर दिया, सेफ्टी, सेफ्टी है ईश्वरीय स्नेह में, सेफ्टी है, और क्या है, ये ईश्वरीय स्नेह जादू है, चुंबक है। तो कितनी सारी बातें याद रहनी चाहिए धीरे धीरे, नहीं तो अगर याद ही नहीं रहेंगे तो दूसरी बातें याद आएंगी, क्योंकि मन का काम है सोचना, कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही। मन एक बच्चे की तरह है, तो उसके बच्चे की तरह ही पालना करनी है, और बच्चों की पालना कैसे की होती, पिता को पता होता है। तो आत्मा जो ना पिता है, और मन बुद्धि संस्कार उसके बच्चे हैं, तो उन बच्चों की पालना हमको ही करनी है, कैसे कैसे करनी है, क्या क्या खुराक चाहिए, नहीं तो बच्चे उत्पात मचाएंगे, क्योंकि आज तो पहले से उत्पात मचाने की है। तो उन बच्चों को काम दे देना है, खुराक देनी, थोड़ी थोड़ी खाने के लिए, कुछ सोचने के लिए, तो फिर वो काबू में रहेंगे, नहीं तो भागते रहेंगे इधर उधर, अंदर ही अंदर तूफान मचाएंगे। एक तो दूसरे बच्चे नहीं छोड़ेंगे जो घर में रहते हैं, माताओं के बच्चे, और अंदर में भी बच्चे बैठे हैं, डबल डबल सेवा करनी पड़ेगी, मेहनत ही मेहनत। और बाबा तो बोल रहा है मैंने तो छुड़ा दिया, लेकिन फिर भी पकड़ के बैठे हुए। तो झूले में झूलते, ज्ञान युग के झूले में झूलते रहना है। जितना भी काल की मुरली में, काल साकार मुरली थी ना, तो उसमें बाबा ने कहा था कि ये दुनिया तो अभी इसमें रहना ही नहीं है। कितना वैराग्य था मुरली, ये चीची दुनिया है, तीन बार बोला बाबा ने, चीची दुनिया है। लेकिन लगती है चीची दुनिया, कितनी अच्छी लगती है, कितने अच्छे अच्छे साधन है, कितना अच्छा अच्छा सब कुछ है। ऐसा तो नहीं कि थोड़ी देर लगता चीची, फिर जैसे बाहर निकले सब अच्छे हैं, फिर अगले दिन मुरली में गए हाँ चीची है, फिर बाहर निकले फिर अच्छे अप डाउन अप डाउन, ऐसे तो नहीं चलता रहता है। तो देखना यथार्थ वास्तविकता क्या है। तो बाबा जैसा समर्पण भाव, बाबा जैसे त्याग तपस्या समर्पणता, बाबा जैसा स्नेहा, पुरुषार्थ स्नेही बनना है तो सबके स्नेही बन जाएंगे। बाबा जैसा वैराग्य चाहिए कि सचमुच इस संसार से हमारा वैराग्य है, संसार से छोड़ दो, संसार से बैराग करने की इतनी जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा बैराग अपने आप से करना है, अपने आप से मना अपने देह से बैराग। जब तक हमें अपने देह से वैराग्य नहीं है, दूसरे के देह हमको आकर्षित करेंगे और वो ही हमारे पुरुषार्थ में बाधक बनेंगे, और दोष हम दूसरों पर देंगे ये हमारे पुरुषार्थ में बाधक, वो नहीं है, हम स्वयं ही अपने पुरुषार्थ में बाधक बने हुए। हमारी दृष्टि कहां कहां किस किस के साथ चिपकी हुई है। तो अपने आप से वैराग्य चाहिए, है क्या इस बॉडी के अंदर, हाँ इसकी संभाल भी बहुत करनी है, क्योंकि ये नहीं है तो प्रसाद भी कैसे करेंगे, लेकिन न्यारे प्यारे रहकर। तो बाबा जैसा बेहद का वैराग्य चाहिए, और बाबा जैसा नंबर वन स्थिति, बाबा की कौन स्थिति, निराकारी निरहंकारी निर्विकारी अब्बल नंबर स्थिति बनाई बाबा ने। तो बार बार हमको प्रैक्टिस करनी है, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, निराकार स्थिति में स्थित रह सकते हैं, निर्विकार स्थिति में है, क्या वो हमारा दृष्टिकोण अंदर से वैसा बनता जा रहा है, निरहंकारी है, या कहीं छोटी छोटी बातों में अहंकार हम दिखाना चालू कर देते हैं, अंदर ही अंदर आग लगी है, अहंकार की अग्नि जला रही है, अपने आप को जलाते जा रहे दिन प्रतिदिन। संसार में दिल जिनको अनेक प्रकार के दुख दर्द वाली आत्मा, उनको कैसे उड़ाएंगे। बाबा ने कहा वो भक्ति मार्ग की सामग्री से भी अभी क्या हुआ, वो नामदारी भक्ति होगी, खाली होगी, उसमें आध्यात्मिक मनोरंजन हो गया केवल, लेकिन वो भी कुछ उसमें प्राप्ति नहीं है। तुमको ज्ञान मिला है, तुम्हारी है पढ़ाई, उनकी है भक्ति, भक्ति अर्थात आध्यात्मिक मनोरंजन, वो तो छाया है। तो वो बाबा ने कहा रजोगुणी सन्यासी जो थे उस समय, तो उनको आत्मनिर्वाण के लिए थोड़ा सुख शांति मिलती थी, लेकिन अभी वो भी नहीं है। अभी ये वृक्ष भक्ति का वृक्ष विस्तार को पा चुका है, जड़ जड़ीभूत हो गया है, तो जड़ जड़ीभूत सुख नहीं देता है, छाया दे रहा है, लेकिन अल्पकाल की है वो भी। तो क्या हम भी उसी तरह तो नहीं जी रहे हैं, आत्मनिर्वाण के लिए किसी को ढूंढते नहीं रहे कि मेरा वो कल्याण करे, मेरी भी थोड़ी उन्नति हो, मेरा भी किसी का कुछ सुन के मेरा उत्थान हो। नहीं, हमको खुद ही अपने उत्थान के रास्ते तलाशने हैं, खुद ही अपनी मंजिल के चिराग जलाने हैं, कहां हमारे जीवन में अंधकार आ रहा है, खुद ही तलाशना उसको, क्योंकि खुद अकेले चलने का रास्ता है। सुनना सबका, लेकिन करना अपना ही पड़ेगा, करने के लिए हमारा कोई दूसरा करने वाला नहीं है, हिसाब किताब हमारे खुद ही अपने हैं। पिछले संडे के मुरली बाबा ने कहा ना, एक तो तुम्हारे हिसाब किताब है, लेकिन आने वाले समय में तुमको दूसरी आत्माओं के हिसाब किताब भी तुमको चुकतु करने पड़ेंगे। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमको अभी पता नहीं है अनेक जन्मों में कौन कौन सी आत्माओं के साथ हमारे कौन कौन से हिसाब रहे हुए हैं, वो सामने आएंगे। भले अभी नहीं आ रहे हैं, आएंगे। इसलिए रोज योग के बहुत सारे सूक्ष्म प्रयोग करने हैं। जिन भी आत्माओं के साथ हमारा हिसाब था, उन सबको इमर्ज करना है, सब आत्माओं को, चाहे वो आने वाली हैं, चाहे वो पास्ट की हैं, फ्यूचर की हैं, सबको इमर्ज करके उनको बाबा से साथ कंबाइंड होकर शक्तिशाली साकाश देना है, प्योरिटी का पूर्ण साकाश देना, और उनसे माफी भी मांगनी, उनसे माफ भी करना उनको, और प्रकृति को भी, प्रकृति के साथ हमारे साक्षात बहुत है, अनेक प्रकार की भटकती हुई आत्माएं हैं, क्योंकि सूक्ष्म रूप से है वो भी, हो सकता है भटकती हुई आत्माएं हमारे योग में बाधक है, हमको दिख नहीं रहा है, वो हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी नींद आ रही है, कि अब तो आत्माएं पकड़ के बंद कर रही है, पता थोड़ा नहीं है। इसलिए योग में बैठ के हमको, हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको सवेरे शाम कम से कम योग के लिए टाइम तो मिलता है। तो यहां मधुबन में आए हैं तो मधुबन में विशेष रूप से अपना परिवर्तन करने का ये समय है, ये डायमंड चांस है, इसलिए इसको गंवाना नहीं है, इधर उधर की बात तो सुनने सुनाने में नहीं है, ये बहुत अमूल्य समय है। इसलिए बाबा कहते पुरुषार्थ का समय अभी है, केवल अभी, अगले पल में क्या होने वाला कुछ पता नहीं है। तो योग के समय हमारा पूरा तन्मयता पूर्वक उसमें सारे हिसाब किताब क्लियर करने हैं, अभी नहीं किया तो फिर कब करेंगे, आज के मूल्य में था, अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। तो संसार की आत्माएं जो भटक रही हैं, भक्ति में फंसी हुई हैं, उनको छुड़ाएगा कौन? इसलिए अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना है, अपने आप को इतना मजबूत बनाना है, सर्व शक्तियों से, सर्व ज्ञानों से भरना है। बाबा ने कहा ना, अपने आप को भरेंगे तो दूसरों को दे पाएंगे, नहीं तो समय पर एक अप्राप्ति भी धोखा दे देगी। अभी राजयोगी बनने का समय है। राजयोगी अर्थात आज के मूल्य में था, क्या था राजयोगी अर्थात? स्वराज्य अधिकारी और सर्व खजानों से संपन्न, तीन बातें बताई थी वहां। राज्य राजयोगी अर्थात सर्व खजानों से संपन्न, स्वराज्य अधिकारी, और दूसरा फिर अगर कमाया और खाया तो क्या नहीं है, तो राजयोगी नहीं है, तो प्रजायोगी है। प्रजायोगी माना कमाया और खाया, और एक और थे तीसरे प्रकार के, कौन से? साहूकार क्या करेंगे, थोड़ा सा जमा किया और थोड़ा सा खा भी लेंगे। तो हमको देखना हम कौन सी कैटेगरी में है। राजयोगी अर्थात सदा शक्तिशाली, स्वराज्य अधिकारी, सर्व ज्ञानों से संपन्न, माला माल, आज के प्रधान में भी थी तीन बातें, कौन सी? संपन्नता, संतुष्टता और संपूर्णता, संपत्तिवान। तो क्या हम संपत्तिवान है? ज्ञान गुण शक्तियों में संपत्तिवान है, स्वराज्य अधिकारी है। तो ये जब हमारे बुद्धि में रहेगा धीरे 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 धीरे, तो सचमुच बाबा की कृपा होने लगी, क्योंकि बाबा तो कृपालु दयालु है ना। जैसे घर में पिता को बच्चों के ऊपर तो रहम होता है ना, तो हमारे ऊपर रहम करने आया हुआ कृपालु दयालु बाबा है, तो हमारे पर दया कर रहा है, यही तो उसकी दया है कि रोज वो मुरली सुना रहे। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर बेरहम कर रहे हैं। अगर ये ज्ञान हमारी बुद्धि में दिन प्रतिदिन ज्यादा ठहरना चाहिए और नहीं ठहरा है, माना अपने ऊपर बेरहमी है, हम अपने ऊपर रहम नहीं कर रहे हैं। स्वयं के ऊपर रहम करेंगे तो दूसरों के ऊपर रहम के संकल्प, रहम के वाइब्रेशन स्वतः काम करना चालू कर देंगे। इसलिए अंत में ज्ञान थोड़ा सुनाएंगे सबको, किसी को ज्ञान सुनाने के अंत में कोई टाइम ही नहीं होगा, कौन सुनेगा ज्ञान? वर्तमान में तो उसमें वही चलता ना, हमारे पास से गुजरने वाला व्यक्ति उन वाइब्रेशन से कुछ ना कुछ लेके चला जाएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मंदिर में जाके मूर्ति को भगत खड़ा कहता है कुछ दो, मूर्ति बोलती है कुछ, भगत बोलता है लेकिन मूर्ति थोड़ी नहीं बोलती कुछ, उसके वाइब्रेशन से वो सब अनुभव करता है। तो उसकी तैयारी तो पहले से चाहिए ना, इसलिए बाबा ने कहा स्टैंप अब लग रहा है अभी से, वो जहां से हम गुजर जाएं तो कुछ ना कुछ तो उनका दुख दर्द दूर होना चाहिए, उनको खुशी मिलनी चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, उनके जीवन में परिवर्तन के ख्याल आने चाहिए कि हमको कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होना है। तो हमारे वाइब्रेशन दिन प्रतिदिन पॉजिटिव होते जाने चाहिए, प्योर होते जाने चाहिए, शक्तिशाली होते जाने चाहिए। तो बाबा जैसे ये अभ्यास करना बार बार, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, जिसको पांच रूप में भी कर सकते हैं, लंबे समय तक शांति धाम में रुकना है, बाबा के साथ कंबाइंड रहना है, या फिर बाबा को ऊपर से नीचे ले आने का है, यही सोच लेना परम धाम इधर ही है और बाबा इधर चिपका हुआ है, चिपक गया जा ही नहीं रहा वो, ऐसे अनुभव करना है वो, और बाबा यहां से मुझे शक्तियां दे रहा है और इधर से निरंतर जाती जा रही हैं, आंखों से, कान से, नाक से, हाथों से, सब से जा रही हैं, सब शक्तियां जा रही हैं, ज्ञान गुण शक्तियों के वाइब्रेशन फुल फोर्स से, जैसे बाढ़ कैसे आती है, ऐसे फुल फोर्स से सर्वशक्तियों के वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैल रहे हैं, पवित्रता के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। आज के मूल्य में पवित्रता के शब्द कहां था बताओ? मूल्य के अंदर नहीं था, लेकिन था चार पेज के अंदर ही, बताओ अभी। हाँ कहां था बताओ? माता जी ने ठीक बोल दिया। आज इंटरनेशनल डे के योग में कौन सा संकल्प दिया था? तो उस संकल्प से योग किया, अपने को लाइट हाउस, माइट हाउस, समझ विश्व को पवित्रता का साकार देना है, तो वाइब्रेशन निरंतर निकलते रहने, उसी एक संकल्प में बैठ जाना बस, मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूं, ये लाइट की काया है, मस्तक के अंदर में पवित्रता का चमकता हुआ सितारा हूं, पवित्रता का सागर ऊपर से अवतरित हुआ, यहां आके बैठ गया और मुझसे, मुझ आत्मा से पवित्रता की निरंतर साकाश निकलती जा रही है, जैसे बाबा फुल फोर्स से देता जा रहा है, क्योंकि उसका मेरे से बहुत प्यार है, ऐसे अनुभव कर लेगा। मन ही मन वो संकल्प चलाने हैं, योग में खाली सुन बैठ नहीं जाना है, अंदर में अंदर संकल्प चलाने हैं, नहीं तो खाली बैठ जाएंगे बिना संकल्प होंगे तो फिर सुस्ती आएगी, फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि मन का काम तो संकल्प ही करना। अभी बाप के जा हम लौकिक घर में जाते हैं, पिता के सामने केवल बस बैठे रहेंगे, कुछ तो बोलेंगे ना, नहीं तो बोलेगा मेरा गूंगा बच्चा है, तो बाबा को बुला के बात करनी है उससे, हैं कुछ तो बात करनी पड़ेगी ना, नहीं तो बोलेगा ये गूंगा बच्चा, ये तो मेरी जिम्मेवारियां कैसे निभाएगा, किसी दूसरे को ढूंढता हूं अभी। तो बाबा से बातें करनी सीखनी है, सूक्ष्म में सूक्ष्म, अंदर ही अंदर, मन ही मन में, तो मजा आएगा, नहीं तो फिर दिन प्रतिदिन लगेगा ज्ञान तो सुन रहे हैं, ब्राह्मण तो बन गए, कुछ तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऐसे दिख रहे हैं, ये भी नहीं परिवर्तन हो रहा है, सब ऐसे दिख रहे हैं, क्योंकि हमने खुद को नहीं बदला, दूसरे भी ऐसे दिखेंगे अपने को, तो बदलना खुद को, दूसरों को बदलने की अपेक्षा नहीं रखनी है, क्योंकि उनको बदलने वाला ऊपर वाला बैठा हुआ है, हमारे दृष्टिकोण में लगता है दूसरा नहीं बदल रहा है, लेकिन क्या पता उसका अंदर अंदर कौन सा प्रसाद चल रहा है, हमारा हद का दृष्टिकोण है, वो बेहद का दृष्टिकोण है ऊपर वाले का। आज के मूल्य में सर नॉलेजफुल कौन है, कैसे ज्ञान के तीसरे नित्य जो तीनों लोग को, तीनों कालों को जानता है, वो नॉलेजफुल है। तो ऊपर वाले को सब पता ना, मेरा बच्चा कौन कौन कैसा है, तो हम किसी के ऊपर क्यों टिका टिप्पणी करें, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको वैसा नहीं करना चाहिए, अरे मैं क्या करूं, मुझे करने के लिए भेजा हुआ है, मुझे ये थोड़ा करने के लिए भेजा, मैं उसको देख रहा हूं, देखने के लिए थोड़ा नहीं भेजा है, जिस चीज के लिए हमने दाखिला लिया है वही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे ना, जो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं है, पढ़ रहे हम एमए की पढ़ाई और फिर दसवीं की किताबें लेके पढ़ रहे हैं, तो कैसी बात बनेगी, या पीएचडी की किताबें पढ़ रहे हैं, जो हमको पढ़ाई दी गई है उसको पढ़ना अच्छी तरह से, वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। अगर इसलिए आज की मूल्य में था, एक रस स्थिति बनाने के लिए बताया आज की मूल्य में बाबा ने, क्या मूल्य में बहुत सारी बातें होती हैं, एक रस स्थिति बनाने के लिए एक मत, एक बाप, एक रस, बाबा ने कहा जब एक ही परिवार, राइट, हाँ यही तो कमी रहेगी हमारे में जो याद नहीं रहा ये तो एक परिवार, तो बाबा ने कहा दूसरी जगह मार्जिन मिलती कैसे आपको, एक ही रास्ता है तो दूसरे रास्ते पर जाते क्यों, तो जो सब्जेक्ट मिला हुआ हमको वही पढ़े ना, दूसरे सब्जेक्ट को हम हाथ क्यों लगाते हैं, जो हमारा है ही नहीं, जो हमको मिला ही नहीं पढ़ने के लिए, जरूरत ही नहीं है, जिस सब्जेक्ट की हमको जरूरत है उसको हमको पकड़ के रखना है, उसमें हमको मास्टरी करनी है, दूसरों को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे जो भी हम मूल्यां सुनते हैं साथ साथ में कोई भी वर्ड आए तो लिंक धीरे धीरे टच होता जाएगा, और ये लंबे समय के बाद इससे जब भी हम मुरली सुनते हैं तो पूरा फोकस, मन को फोकस करना है, एकदम पूरा फोकस करना, या लिख रहे हैं तो लिखने में फोकस करना पूरा, वो 10 पॉइंट लिखे हैं या 15 पॉइंट लिखे हैं तो सारे दिन में बुद्धि में रिवाइज करने हैं, वो 15 के 15 भूलने नहीं चाहिए, 10 हो तो 10 के 10 भूलने नहीं चाहिए, जब भी मौका मिले या किसी को पूछो या योग में बैठे तब याद करो, या पानी पी रहे तब याद करो, या भोजन कर रहे तब याद करो, जैसे हम भी भोजन बैठते हैं तो कई बार सामने वाले बातें करते हैं, हम भी करते हैं उसमें, लेकिन जैसे मौका मिलता है तो अंदर सोच भी लेते हैं, क्योंकि सामने वाले को क्या पता कि क्या देख रहे हैं, अंदर में क्या हो रहा है, क्योंकि कोई समय परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, कोई को फोन ही आ जाएगा, कोई पूछने आ जाएगा, बताना तो पड़ेगा नहीं, और ये नहीं देखना कि बातें करते भोजन कर रहे हैं और पता नहीं वो कौन सी बातें कर रहे हैं, क्या वो ज्ञान योग की बातें कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भोजन पर ज्ञान योग की बातें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान योग की बातें अगर कर रहे हैं और दूसरा तीसरा व्यक्ति देख रहा है जो बाहर से आया, उसको क्या पता ज्ञान योग की बातें कर रहे हैं, बोलेगा ये भोजन पर बोल रहे हैं, तो कहीं अगर हमको बोलना भी पड़ता है, क्योंकि सेवा है, सेवाओं का विस्तार है, कहीं से फोन आया कुछ है, जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन मन ही मन अंदर में जैसे समय मिला थोड़ा सा तो मन को उसमें बिजी कर देना है, नहीं तो मन तूफानी घोड़ा है, तूफानी घोड़ा था ना एक बार सकार मूल्य में, वो तो भागेगा भागेगा, इसलिए इसको सही दिशा देनी है। और आज की मूल्य में एक सीट दी थी बाबा ने, कौन सी? साक्षीपन की सीट। तो उस पर बैठने से क्या क्या होता है? होता है कुछ कि नहीं होता? कुछ भी, कुछ तो होता है ना बाबा ने। क्या सीट अच्छी हो तो बैठने में कितना मजा आता है। तो इस साक्षीपन की सीट बैठने में बहुत मजा है, क्योंकि साक्षीपन की अवस्था अर्थात जैसे कोई व्यक्ति फिल्म देखता है तो उसमें इन्वॉल्व थोड़ा नहीं होता है। उस फिल्म में विलेन भी होता है, हीरो भी होता है, कॉमेडियन भी होता है। अगर मान लो सभी हीरो हो जाए तो फिल्म अच्छी लगेगी? मारदाड़ भी चाहिए, उसमें सब चीजें होती हैं। तो उसी तरह बाबा कहते साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर बैठो तो हर आत्मा का पार्ट अच्छा लगेगा, क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। उसमें हमारी स्थिति बिगड़ेगी नहीं, साक्षी स्थिति की, साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठे रहने का, उसमें मुंझेंगे नहीं। सीट पर सेट रहने से हमेशा बाबा कहते मौज में रहेंगे। और क्या था आज की मुरली में? हाँ, तीन लोगों की राशि बाबा ने एक जैसी बताई। कौन सी राशि थी? तीनों की राशि एक जैसी थी। किस किस की? दिल्ली, गुजरात, इंदौर। तो तीनों की राशि एक जैसे कैसी है? बाबा ने कहा तीनों की राशि एक जैसी है। कैसे? गुजरात तो ग से शुरू होता है, दिल्ली द से शुरू होता है, और इंदौर आई से शुरू होता है। तो एक जैसी कैसी राशि होगी? हाँ, क्योंकि दिल्ली राजधानी स्थापन करने वाले हैं तो राज्य के साथ साथ में रहेंगे, तो साथ साथ आ गया। और गुजरात वाले वो पास में बाजू का कमरा है तो पास में रहते हैं, और इंदौर वाले इंडोर घर के अंदर ही है। तो बाबा की देखो कैसे राइम्स करके वो राशि एक ही बना ली। तो उस समय तो हमको पता नहीं चला, फिर बाद में देखा कैसे एक ही राशि है। और क्या बताया बाबा ने आज? हाँ, जो अद्र कुमारों के साथ बाबा ने बताई कि घर गृहस्थ में रहते हुए अलौकिक दृष्टि, अलौकिक वृत्ति, अलौकिक संकल्प, तो हमारे सब अलौकिकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जानी चाहिए, है ना। और कुछ बहुत हो गया ना। तो ये सारा बार बार चिंतन करना अपना ही, हाँ, सदा सुहागिन आत्मा है। हाँ, है जी, नई सहयोगी आत्मा है, सही बोले माता जी। तो ये सारी बातें धीरे धीरे जितना हम चिंतन में रहेंगे तो हमारा कल्याण होने वाला, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है बना। हाँ, प्रजा का भी कल्याण करना पड़ेगा तो ये तो मैल मिलेंगे, तो मैलों का लालच है, ठीक है, होना चाहिए। ओम शांति।